विवाद चला है, कौन पिता है कौन है माता। इस गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं जगत के माता पिता, और किसी को तो नहीं कहेंगे। मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धियोग अपने सच्चे माता पिता जो शक्ति के रचयिता हैं उनसे लगाओ। सृष्टि साकार है, तो साकार सृष्टि को रचने वाले माता पिता भी कैसे होंगे? साकार ही होंगे। निराकार बाप ज्योति बिंदु, तो आत्माओं को ज्ञान दे करके निराकारी आत्माओं को बोध देते हैं कि तुम बिंदु आत्मा हो। तो वो निराकार बाप के निराकारी बच्चे हुए। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु बाप के साथ बिंदु बिंदु आत्माओं का दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। लेकिन जब वो साकार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो पहले पिता फिर माता। लेकिन यहाँ माता को आगे क्यों रखा गया? गीत क्या है, गायन क्या है? तुम मात पिता हम बालक तेरे, संस्कृत में भी क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो माता को आगे क्यों रखा? पहले तो बीज पिता होता है। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के सामने पहले माँ प्रत्यक्ष होती है, तो छोटे छोटे बच्चे पहले माँ को पहचानते हैं। बच्चों का सारा आधार जीवन का माँ के ऊपर जाकर पड़ता है। तो जो रचयिता मात पिता हैं, उनसे बुद्धियोग जुटाओ। ये जो मात पिता मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ने का है। वो तो 84 जन्मों के 84 मात पिता हुए, अनेक हुए, और ये हैं सारी शक्ति के एक मात पिता। हिंदू भी जिसको मानते, आदि देव आदि देवी, जैन भी मानते, मुसलमान भी मानते, आदम हवा और क्रिश्चियंस भी मानते एडम और ईव। तो जो सारी शक्ति के सच्चे माता पिता हैं, उनसे नाता जोड़ना है। नाता माना संबंध है, क्लोज कॉन्टेक्ट। तो जिनसे नाता तोड़ने का है उनको भी माता पिता कहा जाता है, और जिनसे नाता जोड़ना है उनको भी माता पिता कहा जाता है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने। तो क्या मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को ये अनुभूति होती है उन देहदी के माता पिता से कि तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे जितने हमको मिलते हैं उतना दुनिया में और कोई हद के माता पिता नहीं दे सकते? क्या 500 करोड़ आत्मा ये अनुभव करती है? कैसे 500 करोड़ मनुष्य आत्मा कैसे अनुभव करेगी कि हमने सुख घनेरे माता पिता से पाए? जब उनको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि हमारी आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती है तो उस समय सबसे जास्ती सुखी होने का फाउंडेशन हमने कहाँ लगाया? जो पहले पहले सत्व प्रधान स्टेज में हर आत्मा को आके सड़क का सुख महसूस होता है, दुख महसूस नहीं होता। तो ज्ञान के आधार पर हर आत्मा की बुद्धि में ये बैठेगा कि जरूर
वो निराकार बाप इस तस्ती पर आकर के साकार माता पिता का पार्ट बजाता है और वो हमारा भाग्य बनाता है। वो है भाग्य बनाने वाला और सब है भाग्य बिगाड़ने वाले। तो ऊंचे से ऊंचा सरकार कहा जाता है तो क्या करता है हमारे लिए ऊंचे से ऊंचे भाग्य की रचना करता है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो इस बात का अनुभव न करे तो उस माता पिता ने हमारे भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाया। तो जो भी आत्मा परम धाम से उतरेगी वो पहले जन्म में ऊंचे से ऊंचा सुख प्राप्त करेगी। उसके बाद के जो जन्म होंगे जो लौकिक माता पिता से होंगे उनमें इतना सुख अनुभव नहीं हो सकता। तो तुम माता पिता हम बालक तेरे वह सब एक को कहते हैं और वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग है। ये माता पिता सारे भारत अथवा सारी दुनिया का है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों आदि को छोड़ना ये जब तक देही अभिमानी बनने का ज्ञान नहीं है तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है यही बड़ी खूबी है। क्या खूबी बताई? पुराना जगत और नया जगत तो नाता तोड़ा जाए और नाता जोड़ा जाए। नाता माने संबंध, संबंध तो साकार में होता है ना। तो एक तरफ जोड़ना और दूसरी तरफ तोड़ना ये तभी हो सकता है कि जबकि दोनों सामने हों, इसी सच्ची पर दोनों संगठन मौजूद हों। नहीं तो जोड़ने और तोड़ने का कार्य नहीं हो सकता। तो हद के घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना ये तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना चलता चला है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो भूल जाती है, जहां जाकर जन्म लेती है वहां नाता जुट जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो तो हुआ बहुत सहज। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या नई बात है? वहां तो है स्थूल शरीर से मरने की बात और यहाँ है, यहाँ अंतर क्या है? है यहाँ है जीते जी मरने की बात। माना शरीर छोड़ के मरने के बाद हमें कोई माता पिता से संबंध नहीं जोड़ने की बात है। ये शरीर रहते रहते हम ये अनुभव करें कि उस दुनिया से हमारा नाता बुद्धि का टूट चुका और इस साकार सृष्टि पर जो बेहद के माता पिता हैं उनसे हमारा कनेक्शन जुट गया, ये अनुभव हो तो ये जीते जी मरने की बात है। इसमें शरीर से मरने की बात नहीं है कि हम शरीर छोड़ देंगे फिर हम जाकर के बनेंगे, नहीं। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। लेकिन पुरानी दुनिया से मरकर, मरने का मतलब क्या हुआ? जैसे वो हद का जन्म होता है
तो पुराने जन्म के माता पिता संबंधी सब भूल जाते, जैसे उनसे कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो ऐसे यहाँ भी अनुभूति हो क्या, हम इस पुरानी दुनिया के जो माता पिता हैं, संबंधी हैं, उनसे अब हमारा बुद्धि का कोई नाता, कोई लगाव नहीं रहा। तो ये है गुह्य बात। क्यों, ये बाप तो फिर माता भी कैसे है? बाप ये शरीर धारण कर उनसे आकर के अपने बच्चे बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आते हैं और फिर चले जाते हैं और बच्चे बने रहते हैं, नहीं, आकर के इस माता के द्वारा अपने बच्चे बनाते। परंतु कोई कोई जड़ी-बड़ी भूल जाते, अभी अभी बच्चे बने और अभी अभी भूल जाते। अज्ञान काल में कभी भी माँ बाप को भूलते नहीं है और इस माँ बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि ये है नई बात। इस माता पिता से बुद्धियों को जोड़ना है, फिर उनके लिए सर्विस में तत्पर भी रहना है। इसके लिए माता पिता से बुद्धियों को जुटा रहे, इसके लिए क्या करना है? सर्विस में, ईश्वरीय सेवा में लगे रहना। ये नहीं कि सिर्फ याद ही करना है, याद और सेवा का डबल लाभ होगा तो माया प्रूफ हो जाएंगे। माया हमारा बुद्धियोग तोड़ नहीं सकेगी, नाता तोड़वा नहीं सकेगी। तो जैसे बाप को सर्विस का पूर्ण रहता है तो बच्चों को भी सर्विस का पूर्ण रहना चाहिए। बच्चों को भी सर्विस का पूर्ण रहना है, कहते हैं भगवान की पूर्ण। भगवान को पूर्ण हुआ नई दुनिया रचे। तो नई दुनिया रचने का जो फुरना हुआ, तो ये बड़ा, कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। हद के लौकिक बाप को दो चार बच्चों का, आठ दस बच्चों का, दस बीस पचास बच्चों को उनका परिवार बनाने का फुरना रहता है। लेकिन ये कितना बड़ा फुरना है, है? इस बाप को जो बेहद का माप है उसको कितना बड़ा फुरना है, मेरे कितने बच्चे बने, है? 500 करोड़ मेरे बच्चे बन जाए। सबको पावन बनाना। बच्चे क्यों बने? क्योंकि सब बच्चों को पावन बनाना है। उसको पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। और सिखलाना कितनों को है? बाप के साथ तो बुद्धियोग सबका जुड़वाना है। यही धरना हम बच्चों का है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता है हम कोई को काग विस्तार समान सुख से छुड़ावे। पवित्र बनावे,
तो उन पर भी रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि किसको वैराग्य सिखलाए पवित्र बनावे। वो तो समझते हैं घर बार छोड़ना है, ये नहीं समझते कि पतित दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर के पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वो अपनी जवाबदारी को छोड़, घर बार को छोड़, कितने को वैराग दिला करके पवित्र बनाते। तो महिमा उनों की भी गाई जाती है। तो ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही कामचिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वो रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन, और ये सतोगुणी सतोप्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन? तो ये बात बाप बैठ समझाते। रजोगुणी संन्यास किसने सिखाया? रजोगुणी युग कौन सा है? द्वापर युग। और द्वापर में भी जो रजो प्रधान स्टेज का समय है उसमें कौन आता? रजो प्रधान स्टेज की भी परिपूर्णता का समय है, क्योंकि हर युग की भी चार अवस्थाएं होती हैं। तो उस समय कौन आता? द्वापर के आदि में तो इब्राहिम, बुद्ध, क्रैस्ट, ये 500 वर्षों के अंदर ही अंदर आ जाते। फिर बाद में सन्यासी और मोहम्मद। सन्यासी पहले आए या मोहम्मद पहले आए? पहले शंकराचार्य, जो परम धाम से डायरेक्ट आत्मा उतरती है और किसी का आधार लेती है। देवी देवता सनातन धर्म की ही आत्मा का आधार लेती है। तो वो जो स्वरूप हुआ वो हुआ रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला। ऐसे तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सारे ही रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाले हैं, लेकिन उनका हेड कौन है? उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में उनके फॉलोअर्स होंगे। अगर वो पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। प्रजा वृद्धि को कब पाती है? जितनी जिसमें प्योरिटी की पावर होगी उतनी वो प्रजा पैदा कर सकेगा। प्योरिटी की पावर नहीं होगी तो प्रजा भी वृद्धि को नहीं पा सकती। तो ये सन्यासियों ने भी अच्छा ही किया। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी। किस बात में? प्योरिटी। तो सारा मदार है ही पवित्रता पर। सतयुग से लेकर
जो भी ड्रामा में पास हुआ वो ड्रामा में नहीं, दुनिया को पवित्र से अपवित्र और फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। ये ड्रामा में लूज है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ भी होता है सेकंड बाय सेकंड वो फिर कल्पवाद होगा। तो ड्रामा में ये सब मूड है, ड्रामा के चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा सो देखेंगे। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। दूसरा पेज, पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता, भले कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से कोई नहीं समझा सकता। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सच्ची कैसे रखी जाती है कोई जानते नहीं, नई सच्ची रची जाती है व पुरानी सच्ची को बाप आकर के नया बनाते हैं, तो ये बात न मालूम होने के कारण उन्होंने फिर प्रलय दिखाई दी। प्रलय कब हो सकती है? प्रलय प्रकट रूप से लीन हो जाए सब कुछ, कुछ भी न रहे, तो ये तो तब हो सकता है कि एकदम नई सृष्टि रहती जाए। लेकिन बाप तो करते हैं क्या कि पुरानी दुनिया को ही आकर के नया बनाते, तो बाप आया और आकर के पुरानी दुनिया को नया बनाता है और पुरानी दुनिया नई बनेगी कि अभी बन चुकी है? हैं? कोई समझते हैं कि नई दुनिया बन चुकी है? हैं? कोई नहीं समझते, कोई तो समझते होंगे कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, हैं? कि नई दुनिया बनाने वाले हम हैं और नई दुनिया जो बनेगी उससे पहले ये सारी दुनिया लीन हो जाएगी। लेकिन बाप कहते हैं मैं पुराने से ही नई सृष्टि रचता हूँ, उनका कहना है कि पुराना सब खलास हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अरे जब कुछ नहीं बचेगा तो नई सृष्टि का फाउंडेशन कहाँ से आएगा? उनका समझना है कि हम शरीर छोड़ेंगे, हमारी आत्मा कर्मातीत बनेगी और शरीर छोड़ परम धाम वासी जाके बनेंगे, और समझते हैं कि सबका ऐसा ही होगा, तो वो समझते हैं प्रलय होती है, सब खलास हो जाते हैं। कौन समझते हैं? सन्यासी। तो बात आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, तुम फिर औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। ये पुरानी दुनिया कोई प्रलय नहीं होती है, पूरी नष्ट नहीं होती है, पुरानी दुनिया की कुछ विशेष आत्माएं नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के लिए बीज बनती है, वो रिजर्व रहते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े से होते। तो कितनी सर्विस है, जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल तो भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई, तो बेहद के बाप को फुरना रहता है हम अपनी सेल्वेशन आर्मी को वृद्धि कैसे करें। कैसी सेल्वेशन आर्मी? सेल्वेज होने से पहले ही डूब जाए या खुद भी सेल्वेज होकर पार जाए और दूसरों को भी पार कराए? कैसी आप सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि चाहते हैं, कराते हैं? खुद भी पार जाए और दूसरे सहयोगियों को भी पार ले जाए। तो बाप को इस बात का फुरना बना हुआ है, सभी को बच्चे कैसे रास्ता बताएं? बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, तलब पहले मुआफी, जिसको शिवाय नमा कहते हैं। जो बाप आया हुआ है उस सेवक को नमन क्यों करते हैं? सब उसको नमन करते हैं निराकार को, तो जरूर निराकारी स्टेज में रहकर के उसने सारी दुनिया को पवित्र बनाया है। पवित्रता का ही पूजन होता है, नमन होता है, वो है सभी से ऊंच, ऊंच से ऊंच परम धाम में रहने वाला। ये प्रैक्टिकल स्टेज की बात है, ऊंचे से ऊंचा करतार। अरे करतार है तो करने वाला होगा, तब तो करतार हुआ कि सिर्फ बिंदी होगा? तो वो करतार है, कार्य करने वाला है, पार्ट बजाने वाला है। एक साकार शक्ति पर ही पार्ट बजाया जाता है, लेकिन ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहकर कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है, नीचे स्टेज में पार्ट नहीं बजाता। इसलिए उसको कहा जाता ऊंचे से ऊंचा करता, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। हम आत्माएं भी सभी वहां की रहने वाली, कहां की? ऊंचे से ऊंचे धाम की रहने वाली। तो अंतर क्या हुआ? परमात्मा में आत्मा में अंतर हुआ कुछ? हम भी ऊंचे ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, वो भी ऊंचे धाम का रहने वाला है, और 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब उस धाम की रहने वाली, कीट पशु पक्षी पतंगों सबकी आत्माएं उस ऊंचे धाम में रहने वाली। तो ऊंचे से ऊंचा करतार क्यों कहा जाता? इसलिए कहा जाता कि और आत्माएं उसके मुकाबले उतनी ऊंची स्टेज धारण नहीं कर सकती। तो हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, न मरने वाली, न आत्मा मरने वाली है, न उसका पार्ट मरने वाला है। वो कब जलती मरती नहीं है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो, अपनी आत्मा के पार्ट को देखो, और जो मुख्य मुख्य पार्टधारी एक्सेप्ट है उनके पार्ट को देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और ताल तालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उन एक एक पत्ते को कैसे देखेंगे? तो उन पत्तों की गिनती नहीं की जा सकती। ताल तालियां तो गिनती कर सकते हैं, तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन हम देवी देवताओं का है। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, फिर जैसे बनियन ट्री झाड़ सारा सड़ गया है, और दूसरे फाउंडेशन कितने लगे हुए हैं, शाखाएं कितनी निकलती जाती हैं,
बना हुआ है कलकत्ते में, गंगा के समुद्र के किनारे ढेर सारी दूसरी दूसरी शाखाएं तना का रूप ले गई, लेकिन मूल तना गायब हो और शाखाओं के भी पत्ते निकलते हैं। तो ये भी देहर का कितना बड़ा धाड़ है, तुम बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ संसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसी बुद्धि में ये चिंतन चलता है, सारा दिन तो मन चिंतन मंथन किसी की बुद्धि में चलता नहीं। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिर जाए ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो टपकता ही रहेगा, क्या ज्ञान विचार सागर मंथन चलता ही रहेगा। झाड़ बुद्धि में है तो उसका बीज रूप भी याद रहता है। हम भी वहां के रहने वाले हैं, फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंडर आते हैं बनकर, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले। ऑलराउंड का मतलब क्या हुआ कि जब से झाड़ पैदा होना शुरू हुआ तब से लेकर के और झाड़ का जब तक अंत हुआ, आग लगी इस सारी दुनिया को, तब तक हम इस सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले रहते हैं, ऑलराउंडर बन गए। हमारा एक भी जन्म कम नहीं है, तो ऑलराउंडर पार्टधारी हुए आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता है पतित जर्जरी भूत अवस्था में। पहले पहले जो थे वो भी अब पुराने, पिछाड़ी वाली चाल टालियां भी पुरानी है, तो जो शरीर सेवल है उनको ओना रहता है कि हम तो बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से इसको देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने, 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम बता सकते हो और कहां से नहीं निकल सकती। तो ये बातें बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए, हम बाबा के खिदमतगार हैं। किसको ड्रामा का राज कैसे समझावें, तनों का योग बाप के साथ कैसे लगवावें, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से देह का वर्ता लेने का मार्ग बताए। तो देह का वर्ता क्या हुआ, जिसको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही दूसरों को भी रास्ता बता देंगे। कौन सा रास्ता है? हाँ, ऑलराउंड पार्टधारी बनने का रास्ता जिनको बाप द्वारा मिलेगा, मिला हुआ होगा, दूसरे मनुष्य गुरुओं द्वारा नहीं। क्योंकि दूसरे मनुष्य गुरु जो है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट या उनके आधार है, वो तो ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं। सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, सत्युग का जो भी लास्ट तक नारायण, उनके तो जन्म ही कम होते जाएंगे। तो जिनके खुद ही जन्म कम है वो तो कहेंगे ये दुनिया तो प्रलय हो जाती है, फिर नए सिरे दुनिया शुरू होती है। सन्यासी बेचारे ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं। जब ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते तो उनको क्या पता इसलिए वो तो कह देते हैं दुनिया में प्रलय हो जाती है। लेकिन जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले बच्चे हैं वो इस बात के रहस्य को जानते हैं, जो डायरेक्ट परमात्मा बाप से ऑलराउंड पार्ट का वर्षा लेते हैं, मुक्ति और साथ में जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति, जीवन भी जिए लेकिन दुख का अनुभव न करें, तो ऐसी स्टेज का एक प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हैं। भले दुनिया में विनाश ही विनाश की लीला होती रहे, चारों तरफ मौत ही मौत का नजारा हो, लेकिन वो बच्चे दुखी नहीं हो सकते। तो जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वो ही बताएंगे ऑलराउंड पार्टधारी बनने का मार्ग। बाप ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, राजाई प्राप्त करने वाला योग, प्रजा योग नहीं, राजयोग, जिसमें राज भरा हुआ है, अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। क्या कहा, ऐसे नहीं बाप आते हैं ब्रह्मा के तन में और आकर के फिर चले जाते हैं, फिर गेट से हम बच्चे खोलते हैं, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा, बाप ही आकर के राज्यों को सिखाते हैं अथवा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं। जब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट से नहीं खुलते हैं, तब तक बाप वापस नहीं जा सकता। तो ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। चित्त भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, ऐसे होता है कि दूसरों के भाव स्वभाव को देख करके हम खुद जलते मरते रहते। अरे जिसका जो जैसा पार्ट होगा, जिस धर्म जिस ताल ताली का पार्ट होगा वो वैसा पार्ट बजाएगा ही। हम इसमें जलन क्यों रखें, हम क्यों जलते हैं, क्योंकि हमारा उन आत्माओं के साथ लगाव लगा होता है। बाप के साथ हमारा लगाव नहीं जुटा हुआ है, उन आत्माओं के साथ हमारा लगाव जुटा हुआ होता है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो हमको जलना मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम लगाना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है, मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, टाइम तो बहुत मिलता है। तो तरस पड़ना चाहिए, बेचारे सभी बाप से बिछोड़े हुए धक्का खाते रहते हैं, उन पर तरस पड़ना चाहिए है? जो बाप से बिछुड़े हुए हैं, वंचित हो गई हैं आत्माएं, बिछुड़े हुए हैं, बाप से मिले कब थे, 500 करोड़ की दुनिया की तो बात ही नहीं जो वो बाप से बिछुड़ी हुई है, क्या वो मिले थे, तो किसकी बात है। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई बच्चे हैं जिन्होंने पहले बाप को पहचाना, बाप के बने और फिर बाप से बिछुड़ हो गए, उनकी बुद्धि में से ये बात निकल गई कि बाप ही ईश्वर कर कहता है। तो बिछुड़े हुए हैं तो बेचारे धक्का खाते रहते हैं, कभी किसी गुरु के पास, कभी किसी गंगा यमुना नदी में जाकर के स्नान करते और पाप भी करते रहते हैं। वो समझते हैं हम पुण्यात्मा हैं, कि हम गंगा स्नान करते हैं तो हम पुण्यात्मा हैं, तो ऐसा वो समझते हैं। बाप समझाते हैं ये सभी पाप करते हैं, एक तरफ कहते कि गंगा स्नान करने से गंगा पतित पावनी है, हम पतित से पावन बन जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते परमात्मा पतित पावन है। तो बुद्धि धक्के खा रही है। जब बुद्धि धक्के खा रही है तो दूसरों को भी धक्के खिलाएंगे। न खुद सच्चाई को जानते हैं, ट्रुथ गार्ड सागर को जानते हैं, और न दूसरों को रास्ता बताते। तो सभी पाप करते हैं। कौन सा पाप करते? बाप से बेमुख करते हैं। जब बाप को नहीं जानते, क्या नहीं जानते, वो कहते हैं बाप सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है। तो जिनमें बाप है वो ईश्वर की रचना कर रहे हैं। अगर मेरे में, तेरे में, सब में बाप है तो बाप क्या करेगा? जो हम तो जरूर स्वर की रचना करेगा। तो अपने से बुद्धियों को जुड़वाते हैं, और जो परमात्मा बाप एक व्यापी बन करके आता है, वास्तव में वो सर्वव्यापी होता ही नहीं। कुत्तों बिल्लों में नहीं आता, पत्थर ठिककर बुद्धियों में नहीं आता, वो तो आता ही है मनन चिंतनशील मनुष्य में आता है। उसका नाम ही है मनु। मनु की जो औलाद है वो भी मनुष्य कहा जाता है, पहली पहली औलाद। तो कितने मुझे हुए, कितना बड़ा पाप है बाप से बेमुख करना और बाप से सन्मुख करना अथवा बेमुख करना, इन दोनों बातों में रात दिन का फर्क है। क्या कहा? एक तो बाप के सन्मुख करने का धंधा करते हैं, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो बाप से विमुख करने का धंधा करते हैं। कितना फर्क है? रात और दिन का फर्क हो गया, जमीन आसमान का फर्क हो गया। कहां बहुत ऊंचा काम और कहां बहुत नीच से नीच काम। सभी मुझाते रहते हैं, खुद भी मुझे हुए हैं, जानते नहीं, समझते हैं कि सृष्टि लीन हो जाती है, प्रलय हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता। फिर ऊपर से राजकुमार राजकुमारी आत्माएं रूपी सितारे नीचे उतरते हैं और प्रिंस प्रिंस बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऐसा कुछ भी होता नहीं है, खुद भी मुझे हुए हैं, दूसरों को भी मुझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए, बाप के सन्मुख लाना। तुम्हारा धंधा क्या है? बाबा के सन्मुख लाना। उनका काम क्या है? बाप से विमुख कराना और अपने सन्मुख रखना, बिठाना। तो उल्टा धंधा हो गया। बाप वो कहेंगे तुम उल्टा कारी करते हो, तुम उल्टी गंगा बहाते हो, और तुम कहते हो कि वो उल्टी गंगा बहाते हैं। तुम ब्राह्मण हो, गीता के भगवान के सत्य सत्य बच्चे, तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण भी नहीं कह सकते। क्या नहीं समझा सकते? कि गीता माता कौन है और गीता पति भगवान कौन है। ये है हमारे माता पिता, हमारे ही नहीं है तो सारी सृष्टि के माता पिता। लेकिन इस बात को कोई समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं। कोई यहाँ भी ऐसे हैं न खुद समझते हैं और न दूसरों को समझा सकते हैं। तो जो समझा नहीं सकते उनको क्या कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे है? वो ब्राह्मण नहीं हुए, वो अभी भी शूद्र हैं जो माता पिता को नहीं पहचानते। जगत पिता, सारे जगत का पिता, 500 करोड़ का, और सारे जगत की माता जगदम्बा उसको नहीं पहचानते। वो ब्राह्मण ही नहीं, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट तो कह सकते हैं, हाँ? या तो हाफ कास्ट ब्राह्मण है या क्वार्टर कास्ट ब्राह्मण है। 100% ब्राह्मण नहीं बने क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं बनी। नाम के ब्राह्मण है, काम ब्राह्मणों का कार्य क्या है? ब्राह्मणों का काम है क्या? बाप के सन्मुख करना, बाप से संबंध जुटाना, बाप से नाता जुड़वाना और दुनिया से नाता तोड़वाना। कुछ अच्छा होता है, जैसे एक घड़ा दूध भरा हुआ रखा है और एक घड़ा ऐसा है जो 3/4 दूध से भरा हुआ और 1/4 विष से भरा हुआ है, तो कुछ अच्छा तो बन जानी चाहिए है? कुछ अच्छे वाले घड़े में ही सही, अंजाम क्या होगा? अगर एक बूंद भी विष होगा अनिश्चय का कि पता नहीं ये हमारा बाप माता है या नहीं है, तो अनिश्चय बुद्धि विनश्चंती हो जाए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 99% हमारा बाप है और 1% ये हमारा बाप नहीं है, कोई ऐसे कहेगा? ऐसा तो होता नहीं। अगर बाप है तो 100% बाप है और नहीं है तो नहीं है। तो 4% बनना अच्छा है, तो जो नाम के ब्राह्मण है, बाप के काम के ब्राह्मण नहीं है, वो धंधा शूद्र पाने का करते हैं। क्या धंधा कौन सा करते हैं? शूद्र पाने का धंधा करते हैं। बुद्धि शूद्र पाने की है। शूद्र क्या करते हैं? शूद्रों का काम क्या होता है? बंदी चवार क्या करते हैं? उन्हें को तो शूद्र कहते हैं दुनिया में। वो क्या करते हैं? चमार मरा हुआ जानवर उठाए ले जाएंगे, उसका चमड़ा निकाल के खींचेंगे, उसको बेचेंगे, उसका धंधा करेंगे। बंदी क्या करेंगे? गंध उठाएंगे। तो सूत्र है माना बुद्धि में गंध की बातें चलती रहती हैं। गंध खाते हैं, गंध खिलाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण पने का धंधा उनकी बुद्धि में नहीं चलता। शूद्र पने की बुद्धि है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं। कैसे ब्राह्मण? पुष्करणी, पुष माना धक्का परे, जैसे कोई ट्रक होता है खुद स्टार्ट नहीं होता, उसको धक्का लगाया जाता है तब चलता है, तब सर्विस करता है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो पुष्करणी होते हैं, खुद सर्विस करने की अंदर से तमन्ना नहीं है, लाभ नहीं है, पुरना नहीं है, जैसे बाप को पुरना रहता है, लेकिन उनको धक्का लगाया जाता है तो जोर जबरदस्ती करने से सर्विस करते। जैसे कबूतर बुद्धि शिव के मंदिर के, शिव के मंदिर में क्या होते हैं? कबूतर होते हैं। एक तोता होते हैं जिनके गले में ज्ञान की कंठी होती है, वो भी अमरनाथ की अमर कथा सुनते हैं, थोड़ा समय सुनते हैं और फिर बाहर खूब आवाज करते हैं। अब कबूतर क्या करते हैं? आज से अंत तक मंदिर में ही घुसे रहेंगे, और उनके मुख से गुरुकुकू की आवाज निकलेगी, बाहर आवाज आती नहीं, ज्ञान की आवाज नहीं कर सकते। और करेंगे क्या, मंदिर में ही रहकर शंकर पार्वती का जो चिन्ह है उसके ऊपर गंध गंध कर दिया, उनकी बुद्धि में क्या चलेगा, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं, मंथन नहीं चलेगा। गंध खाना और दूसरों को गंध खिलाना, यही बात चलती रहती। तो ये यादगार कौन से स्थान की है, संगम युग में जहाँ परमात्मा बाप आकर के वो अमर कथा सुनाते हैं, वहाँ कुछ ऐसे भी कबूतर बुद्धि होते हैं कि उनके गले में पर्चा बांधो, ऐसे ना, क्या करें, गले पड़ गई तो मजबूरी हुई ना, तो उनके गले में पर्चा बांधो तो दूसरों को संदेश पहुंचाएंगे, बाकी उनकी मुख से आवाज नहीं निकल सकती। तो ऐसी आत्माएं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी है, आधारभूत जड़ रूप आत्माओं में भी है, तो बीज रूप आत्माओं में भी है। खुद के अंदर ये फुरना नहीं है कि हम दूसरों के सेवाधारी बने, अपना भाग्य बनाए। तो अजमेर में ऐसे पुष्करणी ब्राह्मण होते, अजमेर मन अजा माना बकरा बकरी, और मेर माने मेढ़ा, भेड़ बकरी। भेड़ बकरियों का जो देश है राजस्थान में वो है अजमेर। भेड़ बकरियां क्या करती हैं, एक भेड़ या एक बकरी जिस रास्ते में चली जाएगी, गड्ढे में जाएगी तो सारी सारी गड्ढे में चली जाएगी। तो ऐसे पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं भेड़ बकरियों की मुआफिक, कि एक गड्ढे में जाता है तो अपनी अकल नहीं चलाएंगे, मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, एक गड्ढे में जा रहा है तो सारी ही गड्ढे में जाएंगे। भेड़ बकरियों के देश में रहने वाले उस देश में, उस शहर में जो यादगार शहर बना हुआ है उसमें मूर्ति किसकी रखी हुई है, हा? ब्राह्मण की। पुष्करणी ब्राह्मण पुष्कर में ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई है, ब्रह्मा की पूजा करते। तो एक होते हैं पुष्करणी ब्राह्मण और दूसरे होते हैं सारस्वत ब्राह्मण। क्या सरस्वती पुत्र है, सरस्वती किसकी देवी है, विद्या की देवी। तो कोई तो है सरस्वती पुत्र, विद्या की देवी के पुत्र, ज्ञानी तू आत्मा है, दोनों ही अमर कथा सुनने वाले, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है, तोते कहे जाते हैं ज्ञान की कंठी वाले, और दूसरे हैं कबूतर बुद्धि। तो पुष्करणी ब्राह्मण जो रहते हैं वो गीता आदि शास्त्र सुनाने का धंधा करते हैं, सिर्फ सुनाएंगे सुनेंगे, बाकी समझेंगे नहीं, धंधा क्या करेंगे, सिर्फ दूसरों को पढ़ करके सुनाएंगे, उसकी गहराई को खुद नहीं समझेंगे। दोनों का धंधा ही है क्या, शास्त्र पढ़ो और दूसरों को सुनाओ, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए और दक्षिणा लेना। शास्त्र सुनाएंगे, पढ़ करके सिर्फ सुनाएंगे, उसके अर्थ को न जानते हैं न दूसरों को समझा सकते हैं। कोई अगर पूछे तो मुंह बंद कर देंगे, बाद में बात करना। क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करना, तो जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ पढ़ करके सुनाएंगे। और पढ़ करके सुनाने के बदले लेंगे क्या? दक्षिणा लेंगे। हाँ, अब तुम तो हो सत्य सत्य ब्राह्मण, और वो पुष्करणी ब्राह्मण कैसे हुए? धक्के से सर्विस करेंगे, जबरन उनसे सर्विस कराई जाएगी तो सर्विस करेंगे, नहीं तो उनको निश्चय विश्वास नहीं है कि ईश्वरीय कार्य चल रहा है, उसमें अपनी लगन से फुरना से सेवा करें। क्यों? क्योंकि 76 में विनाशी नहीं हुआ, 40 साल से ये आस लगाए हुए थे कि 76 में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। परमात्मा बाप की वाणियां सुनते सुनते पक्का कर बैठे थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हुआ और नई दुनिया दिखाई नहीं पड़ी। तो जब नई दुनिया दिखाई नहीं पड़ी 76 में, तो निश्चय बुद्धि बने रहेंगे या नहीं बनेंगे? अनिश्चय बुद्धि हो गए, बस सिर्फ पेट पूजा उनका धंधा है, अपने पेट के लिए ये धंधा कर रहे हैं सुनने और सुनाने का। ना उनको समझने से मतलब है और न उनको समझाना है। तो तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम झूठा धंधा करने वाले नहीं हो। बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप हुआ ना, सच्चों का या झूठों का? सच्चों का है तीसरा भी। और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, वो ब्राह्मणों का बाप नहीं है, इसका बाप है। आत्मिक स्टेज में जो रहने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ उन्हीं का बाप है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। क्या? किसको नमस्ते करता है? रूहानी बच्चों को। बाकी जो देहवानी की स्टेज में है, धक्का लगाओ तब सर्विस करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, विश्व कल्याणी बनेंगे, नहीं तो उनके अंदर की फुरना नहीं है, देहवान में रहते हैं, कोई हमारी सेवा करे। तो शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, उनका निवास स्थान है परम धाम में, ऊंची से ऊंची स्टेज वाला, बोरी पतितों को पावन बनाने वाला है। जो ऊंचे से ऊंचा है, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ऐसे नहीं सिर्फ हिंदू याद करते हैं, सारी दुनिया उनको याद करती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उस निराकार बाप को मानते हैं जो निराकारी स्टेज में रहने वाला। ओ गॉड कहते हैं तो निराकार ही बुद्धि में आता है।
परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए,
आता तो निराकार याद है, लेकिन गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए होने के कारण उस निराकार गॉड फादर को पहचान नहीं पाते। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके आर्टिफिकेशन का पता ही नहीं। शंकर पार्वती की पूजा करते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं या रामकृष्ण की पूजा करते हैं, उन्होंने क्या धंधा किया, क्यों पूजा करते हैं ये पता ही नहीं। देवी जैसे गुड्डे गुड़िया की पूजा करते हैं, आकुपेशन को जानते नहीं। गुड्डे गुड़िया माने दिन में जान नहीं होती, आत्मा नहीं होती, सिर्फ गुड्डे गुड़िया मात्र हैं। अभी अभी बनाया, अभी अभी बिगाड़ दिया, अभी अभी समझा कि ये राम है ये कृष्ण है, और अभी अभी बुद्धि में से निश्चय उखड़ गया, तो क्या हुए? गुड्डे गुड़िया हुए या चैतन्य हुए? बुढ़े गुड़िया को तो बताया ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है तो कितना फर्क हो जाता है। ढेर के ढेर मुझे हुए हैं एकदम जैसे रीढ़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियां देवताओं की सूरत और सीरत मनुष्य की सूरत और सीरत में रात दिन का फर्क हो जाता है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम और हम नीचे पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण बनाने वाला कौन था? अभी तो बरोबर नरक है। फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? जब है सारी दुनिया नरक, ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं है कि नरक में स्वर्ग की बादशाही देने वाला कौन? तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़े ही उठा होगा कि हम ऐसे कब बनेंगे? सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसी जन्म में या अगले जन्म में? अभी तुम समझते हो इसलिए पुरुषार्थ करते हो। ऐसे थोड़े ही कि कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़े और उसे कहा जाए अगले जन्म में तुम डॉक्टर बन जाओगे तो पुरुषार्थ करेगा पढ़ाई पढ़ने का? नहीं। तो तुम पुरुषार्थ करते हो तो अंतर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? ये अंदर में आना चाहिए। तुम पूछ भी सकते हो अगर हम मर जाएं तो हम क्या पद पाएंगे? क्या ये तुम पूछ सकते हो? पूछो, पूछ सकते हो तो पूछो, कोई नहीं पूछेगा है? अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए कि अगर हम मर जाएं तो हम क्या पद पाएंगे। पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते हो है? पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पूछने वाला है कि बाबा हम शादी करें तो कमजोर है या पावरफुल आत्मा है? है तो क्या पद पाएंगे है? अरे जब बाप ने बता दिया कि मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देने आया हूँ, तुमको राजा बाबू बनाने आया हूँ, मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, तो क्या बीच में चला जाएगा क्या है? तुम शरीर छोड़ जाओगे और बाप चला जाएगा, फिर अगले जन्म में बनोगे, फिर गायन होगा? तो पूछ सकते हो कि नहीं,
नहीं
है? तो बाबा तो तुमको झट बता देंगे अगर तुम पूछेंगे क्या कि हम शरीर छोड़ देंगे तो कौन सा पद पाएंगे। बाबा झट बता देंगे कि तुम पाई पैसे का पद पाई लोगे। अरे जब बाप बता रहे हैं कि इसी जन्म में तुमको कंचन काया बनानी है तो निश्चय रखना चाहिए ना। कौन बता रहा है? परमात्मा बाप बता रहे। तो आठ आने का बारह आने का अब कौड़ी का पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए क्या? प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे क्या? ऐसे पूछ पूछ करने वालों की जिनकी पूछ बनी रहती है। अरे बाबा जब बताए रहे हैं तो तुम क्यों पूछ रहे हो? बाबा ने तो पक्का बता दिया कि प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, मकान नहीं बनाना है, बच्चे की शादी नहीं करनी है, है? और खुद की भी शादी नहीं करनी है। तो अगर कोई पूछते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? ये पाई पैसे का पद पाने वाले प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे। क्यों, ये क्या बात हुई? प्रजा को कौड़ी पद कहेंगे और विश्व महाराजन को हीरा पद कहेंगे, ये भी कोई बात हुई? इसका क्या मतलब हुआ है? हीरा और कौड़ी इतना अंतर क्यों कर दिया? कहाँ हीरे की कीमत, कहाँ कौड़ी की कीमत? प्रजापद वो पाते हैं जो पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करते, जिनकी बुद्धि में कौड़ी घूमती रहती है। तो आत्मा कैसी बन जाएगी कौड़ी को याद करते करते? कौड़ी जैसी बन गई। और हीरा, हीरा तो खुद भी चमकता है और चारों ओर रोशनी रोशनी करता है, भले धूल में भी पड़ा हुआ हो, देह अभिमानी की धूल में भी पड़ा हुआ होगा तो भी रोशनी देगा, चमकेगा, आकर्षण मारेगा। तो वो बुद्धि हीरे जैसी जो होगी, उसमें मनन चिंतन मंथन चलता होगा, कौड़ी का चलता होगा या रोशनी का चलता होगा? रोशनी माने ज्ञान की रोशनी। तो दिल दड़पण में अपनी शकल देखो, कौड़ी जैसी शकल है या हीरे जैसी शकल? कैसी है? कोई बंदरपना तो नहीं है? बंदर क्या करता है? 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे याद में, 2 मिनट भी बुद्धि योग जो है, दृष्टि योग जो है, वो एकाग्र नहीं हो सकता। हिलेंगे डुलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे ये क्या हुआ? अरे मंदिर लायक बनना है या बंदर ही बने रहना? नहीं, हम तो राम की सेना है। रावण मरेगा तो हम भी मंदिर लायक बन जाएंगे। अभी रावण मरा कहाँ है? तो दिल दर्पण में